प्रभु से क्या संबंध है, क्या खुशी है प्रभु मिलन, कितना परमानंद है प्रभु प्रेम का अमृत तू कंठ में उतार ले, अंतर के नैन खोल के
शांति। हम सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं और आपकी ओम शांति आवाज से नहीं आ रही है, दोबारा कोशिश करें। ओम शांति। चलिए, जो लोग हॉल के अंदर आ रहे हैं वो भी सभी मिलकर बोलेंगे तीसरी बार, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शाम के ग्लोबल समिट के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं ये समझ सकता हूं कि हम में से कई सारे लोग इस सत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आप सभी जानते हैं जो शख्सियत हमारे सामने है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप में से कितने लोग शिवानी बहन से परिचित हैं, वो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। जो हमारे साथी पहली बार उन्हें देख रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब के लिए मैं परिचय करा देना चाहता हूं। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, जिन्होंने भारत के इस प्राचीन आध्यात्म और राजयोग की शिक्षा को विश्व पटल पर सबके लिए खोल कर रखा। आध्यात्म को मुश्किल साधना न समझकर जीवन के प्रत्येक कदम पर कैसे हम आध्यात्मिक जीवन को जी सकते हैं, उस सरलता को आप सबके जीवन में प्रस्तुत करने के परिचायक रही हैं। भारत और विश्व की सेवा के इन मापदंडों को देखते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। आज आज ये हमारा गौरव है और बेहद खुशी की बात है कि ये आदरणीय दीदी हमारे बीच हैं। आइए आज के सत्र में उनके मुखारविंद से सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ब्रह्मा कुमारी बहने आदरणीय दीदी जी का स्वागत कर रहे हैं और हम सभी करतल ध्वनि से साथ देंगे कि हम सभी की ओर से दीदी जी का यह स्वागत है और सम्मान है।
ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे सभी। छोटा सा एक अभ्यास करते हैं कि स्क्रीन की तरफ नहीं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हम सबको आजकल आदत पड़ गई है स्क्रीन की तरफ देखने की, और न चाहते हुए भी फिर आंखें फिर उस तरफ मुड़कर चली जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। तो छोटा सा आज प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रीन की तरफ नहीं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आज एक प्रश्न अपने आप से पूछते हैं, दूसरे क्या जवाब दे रहे हैं उस बारे में मत सोचना, सिर्फ अपने आप से पूछना, हम में से किस किस को खुशी चाहिए वो हाथ उठाएं, और हम में से किस किस को शांति चाहिए वो भी हाथ उठाएं, और अगर खुशी भी चाहिए होगी शांति भी चाहिए होगी, फिर अगर आपसे पूछा हम में से किस किस को प्यार चाहिए वो भी सारे हाथ उठा देंगे। फिर अब अपने आप से पूछना चाहिए कि इतने साल मेहनत की, परिवार, काम, कारोबार, बच्चे पालना, परवरिश सब कुछ की, और सब कुछ करते हुए यही तो कह रहे थे कि खुशी के लिए कर रहे हैं, और इतने सालों के बाद भी हमें हाथ उठाना पड़ रहा है कि हमें अभी भी खुशी चाहिए, शांति चाहिए। इस 3 दिन के अंदर ये लाइन को तो हमें बदल के जाना ही जाना है। आप सब ने कल सवेरे आत्मा का परिचय सुना होगा कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी होगी कि आत्मा के मूल संस्कार कौन से हैं। एक बार रिपीट करें हम इकट्ठे मिलके कि आत्मा के मूल संस्कार कौन से, मूल संस्कार मतलब ओरिजिनल नेचर कौन सी है। हम अच्छा एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, अपने दोनों हाथ आगे करें। अब मैं कुछ संस्कार बोलती जाऊंगी जो आपको लगेगा कि ये बड़े अनकंफर्टेबल संस्कार हैं, ये मुझे अच्छा फील नहीं कराते हैं, तो उनको आप लेफ्ट हैंड पे रखना और आप बोलना धीरे से लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। और जो आपको लगेगा कंफर्टेबल संस्कार हैं, जो हमें अच्छा फील कराते हैं, उनको आप राइट हैंड पे रखना और आप बोलना राइट, ठीक है। दूसरे कौन से हाथ पे रख रहे हैं उसको नहीं देखना। हमें आज डिसाइड करना है कि कौन से संस्कार हमारे नेचर है और कौन से ऐसे ही ऊपर के लगे हुए दाग है, ठीक है। रेडी, स्ट्रेस, आपको बोलना होगा लेफ्ट या राइट। ओहो पता है 2-3 हजार लोग बैठे हैं हम इधर हॉल के अंदर, 2 आवाज आई सिर्फ। ये आपको इसलिए बोलना है, इसलिए नहीं कि किसी और ने सुनना है, लेकिन जो आप बोलेंगे ना वो आपके यहाँ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि दुनिया में एक अलग ही डेफिनेशन चल रही है नॉर्मल की, इसलिए करेंगे, ठीक है। रेडी, स्ट्रेस, वेरी गुड। खुशी, गुस्सा, वेरी गुड। क्षमा, पक्का पक्का, अच्छा वेरी गुड, पक्का पक्का, अच्छा। चिंता, बच्चों की चिंता लेफ्ट में रखेंगे, बच्चों की चिंता। ओ, रोज तो उनको बोलते हैं हम आपसे इतना प्यार करते हैं इसलिए तो हम आपकी चिंता करते हैं, लेकिन हमें पता है कि जब चिंता करते हैं तो एनर्जी कैसी हो जाती है हमारी, बहुत नेगेटिव हैवी एनर्जी होती है, और वही नेगेटिव एनर्जी किसको जाती है, उनको चली जाती है। इसलिए कहावत है चिंता चिता समान है, चिता मतलब जो जलती रहती है धीरे 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 धीरे, तो चिंता अगर लेफ्ट पे है तो राइट पे क्या होगा, राइट पे होगा केयर, ध्यान रखना, लेकिन चिंता नहीं करना। जितना चिंता हमारी भी एनर्जी को डाउन लेकर जाती है, चिंता उनकी एनर्जी को भी डाउन लेकर जाती है। तो चिंता लेफ्ट पर आता है, केयर रखना राइट पर आता है। ईर्ष्या जेलसी, देखा हमें सारे आंसर पता है, जेलसी लेफ्ट, तो फिर राइट पे क्या आएगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, तो फिर क्या करना, सोचो सिर्फ एक मिनट, आपके आसपास किसी ने कुछ नया खरीदा, किसी को कोई सफलता मिली, कुछ हुआ आपको नहीं मिली, ईर्ष्या नहीं करना, तो फिर क्या करना, उनके प्रति शुभ भावना, दुआएं देना। अच्छा, निंदा लेफ्ट, तो निंदा नहीं करना तो क्या करना, दूसरे की अच्छाइयां देखना। अच्छा, दूसरे की, अपने आप की दूसरों के साथ तुलना करना, कंपैरिजन, और कंपैरिजन का ऑपोजिट क्या होगा, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, अहंकार कहाँ आएगा, और राइट पे क्या आएगा, ईगो का ऑपोजिट क्या होगा, ईगो, हम में से किस किस में ईगो है, हम में से किस किस में ईगो है, अच्छे से हाथ उठा लो, पता तो होना चाहिए किसने। तो ईगो का ऑपोजिट क्या होता है, निर्माणता, ह्यूमिलिटी। अब ध्यान से, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं रखना कि लोग मेरे अनुसार होने चाहिए, लेफ्ट या राइट, बहुत अच्छा, तो ऑपोजिट राइट पर क्या आएगा, वो जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, हर्ट क्रिएट करना, लेफ्ट या राइट, हर्ट हो जाना, उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, और राइट पे क्या आएगा, एक सेकेंड में क्षमा करके उनको दुआएं दे देना, वो राइट पर आएगा। आखिरी, अटैचमेंट, अटैचमेंट, किस किस को अपने बच्चों से अटैचमेंट है, और फिर उसको हम लेफ्ट हैंड पे भी रख रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट राइट हैंड पे क्या आएगा, अटैचमेंट का ऑपोजिट क्या होता है, अटैचमेंट का ऑपोजिट राइट नहीं होता, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट होता है, अटैचमेंट का ऑपोजिट क्या होता है, अटैचमेंट का ऑपोजिट होता है प्यार। हमने क्या किया, अटैचमेंट और प्यार को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। बच्चों से प्यार और बच्चों से अटैचमेंट, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। प्यार ऐसे होता है और अटैचमेंट ऐसे होता है। अब ये सारी चीजें जो हमने लेफ्ट हैंड पर रखी, ये हमारी आंतरिक शक्ति को क्या करती होगी, इसको एक बैटरी की तरह देखें, आत्मा रूपी बैटरी है। हर बार जब मैंने तनाव क्रिएट किया, गुस्सा क्रिएट किया, ईर्ष्या क्रिएट की, निंदा की, चिंता की, हर्ट क्रिएट किया, तो ये बैटरी क्या हो रही होगी, करिए हाथ के साथ, कहां जा रही होगी, थोड़ी सी धीरे 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 नीचे, और कई बार फिर इतनी नीचे चली गई कि हमने हाथ उठाया खुशी चाहिए, और जब हम राइट हैंड से ऑपरेट करेंगे तो बैटरी क्या होती जाएगी, अप 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 अप। तो आज से हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस करने शुरू करने हैं, क्योंकि हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन खुशी चाहने से नहीं मिलेगी, खुशी क्रिएट करने से मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हर एक ने ध्यान से सुनना है। इधर उंगली रखें, आत्मा का रहने का स्थान है ये, यहां पे हमारी सोच चलती है, संकल्प चलते हैं, भावनाएं होती हैं, फिर वो शब्दों में आता है, व्यवहार में आता है, वो यहां होता है। अब अपना दूसरा हाथ ऐसे रखें, इस हाथ पर अपने जीवन की कोई सिचुएशन रख दें, कोई परिस्थिति रख दें। सिचुएशन बाहर है और ये मन की स्थिति है, ये सोच है, ये फीलिंग्स है। सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सिचुएशन में कोई व्यक्ति पर्सन हो सकता है, सिचुएशन में शरीर की बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन में, वो बाहर है, ये मन की स्थिति है। अब ध्यान से सुनना, किसी और का आंसर नहीं देखना, अपना आंसर चेक करना। जब कोई ये बात आती है यहां, क्या इस बात का असर मेरे मन की स्थिति पर होता है, यस या नो? इस बात का असर मेरे मन की स्थिति पर होता है? यस या नो? यस होता है। अच्छा, उंगली हटाइए, अपना एक हाथ आगे करिए, अभी चेक करते हैं असर होता है या नहीं होता है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, आप कल सुबह उठते हैं ये सडनली दर्द कर रहा है, ये नंब हो चुका है, सुन हो चुका है, बहुत जोर से दर्द भी हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सुइयां चुभ रही हैं इसके अंदर, शरीर दर्द में है। ध्यान से सुनना है, आंसर आपको देना है, शरीर दर्द में है, शरीर बीमार है। लेकिन जब शरीर बीमार दर्द में होता है तो क्या मन में भी दर्द होता है? क्या यहां भी दर्द होता है? यहां कुछ होता है? यस और नो? जब हाथ दर्द में है तो यहां भी दर्द होता है? क्या हाथ का दर्द यहां तक पहुंचता है? नो। फिर यहां दर्द कब होता है? यहां जब दर्द कब होने शुरू हो जाता है? जब? सोचो, हम सबको आंसर पता है, आंसर आपने बताना है। यहां दर्द होता है तो यहां दर्द नहीं होता है, यहां दर्द कब होना शुरू होता है? जब हम उस हाथ के बारे में क्या करना शुरू करते हैं? चिंता करना शुरू करते हैं, डरना शुरू करते हैं, घबराना शुरू करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ। अब फिर से इस इक्वेशन को देखो, जब हाथ में दर्द है तो मन में दर्द नहीं होता है। मन में दर्द कब होता है? जब हम वैसा सोचना शुरू करते हैं। अब ये आंसर आप देंगे, जब यहां दर्द होना शुरू होता है, मतलब मन में दर्द होना शुरू होता है, तो क्या हाथ के दर्द में कोई फर्क पड़ता है? मतलब जब चिंता बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, दर्द बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, तो क्या हाथ के दर्द में कोई फर्क पड़ेगा? यस या नो? किस किस को लगता है नो? किस किस को लगता है यस? जब मन में दर्द होता है, दुख होता है, कंफ्यूजन आती है, चिंता होती है, तो उसका असर शरीर पर पड़ता है या नहीं पड़ता? आप बताओ, कौन कौन बोलता है यस? अब इस इक्वेशन को ध्यान से देख लेना, ये हाथ परिस्थिति है, ये मन की स्थिति है। परिस्थिति का असर आप करो हाथ के साथ ताकि आपको रिकॉर्ड हो जाए, ये आपकी परिस्थिति है, ये आपके मन की स्थिति है। ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। परिस्थिति का मन की स्थिति पर असर, बोले एक बार, परिस्थिति का मन की स्थिति पर असर नहीं होता, मन की स्थिति का परिस्थिति पर असर। इक्वेशन क्लियर हो गई? परिस्थिति का मन की स्थिति पर असर नहीं होता है, मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर होता है। इसलिए जो इक्वेशन है वो है, संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनते, मतलब परिस्थिति से सोच नहीं बनती, सोच से परिस्थिति बनती है। लेकिन आज हम ध्यान नहीं रख रहे अपना, तो जैसी जैसी परिस्थिति होती है हम वैसा वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। शरीर बीमार हुआ, हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। किसी ने ठीक से बात नहीं की, हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। जीवन में सडनली कोई मुश्किल आई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। तो मन की स्थिति को हम क्या कर देते हैं? नीचे लेकर आते हैं। परिस्थिति हमारे मन की स्थिति को नीचे नहीं लेकर आया, हमारी मन की स्थिति को कौन नीचे लेकर आया? उंगली रखो उन पे, पक्का? इवन जो आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो भी आपकी मन की स्थिति को नीचे नहीं ला सकते। हमारी मन की स्थिति को कौन नीचे ला सकता है? सिर्फ, अब उंगली रखो उनके ऊपर, हमारे मन की स्थिति को कौन नीचे ला सकता है? अब इसको बोलो, सिर्फ, बोलिए सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कौन? मैं। और मेरे मन की स्थिति को ऊपर कौन लेके जा सकता है? सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मैं। इसलिए लोगों के सामने ऐसे खड़े होना बंद करना है, मुझे खुशी दो, मुझे प्यार दो, मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो। हम इस संस्कृति के वासी नहीं हैं, हम इस देश के वासी हैं जहां हाथ ऐसे नहीं, कैसे होता है? कौन से दिन चल रहे हैं आजकल? नवरात्रे। देवियों के हाथ कैसे होते हैं? उस हाथ की हम पूजा करते हैं, मतलब उस दिव्यता की हम पूजा करते हैं, उस शक्ति की हम पूजा करते हैं। वो हमारे कौन हैं? वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी वंशावली हैं। किस किस के घर में एक नाम है, ये हमारे कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। हाथ उठाओ, किस किस के घर में नाम है। इसका अर्थ क्या है कि देवी देवता हमारे पूर्वज थे और हम उनकी वंशावली हैं। देवी देवताओं का हाथ कैसे? देवी देवताओं का हाथ कैसे? देने वाला। तो आज से मेरा हाथ कैसे? सभी कर लो अच्छे से। आज से मेरा हाथ कैसे? ऐसे ऐसे करना बंद, ऐसे नहीं करना। ऐसे करना मतलब परिस्थिति का असर मुझ पर, और ऐसे करना मतलब मेरी अच्छी अच्छी मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर। वापस उस हाथ को देखें, वो हाथ दर्द हो रहा है। अगर हम परेशान होते हैं दर्द बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम अच्छा अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, शक्तिशाली सोचते हैं, तो क्या इस हाथ के दर्द में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हमारे पास सेंटर पे कुछ दिन पहले एक भाई आए, उनका नाम है संग्राम सिंह जी। वो भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रेसलिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, विश्व स्तर पर। तो वो अपनी कहानी बता रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तब से मुझे एक बीमारी हुई जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, बहुत सीवियर आर्थराइटिस। तो 7 साल की उम्र में वो बच्चा व्हीलचेयर पे था, वो बच्चा उठ नहीं सकता था, वो बच्चा चल नहीं सकता था। उन्होंने कहा, मैं अपने हाथ से पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकता था, और यहां भी पूरा दर्द होता था, तो बोल भी नहीं सकता था, ऐसे थूक बाहर निकलती थी। वो 7-8 साल का बच्चा था। वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे, और उस गांव में रेस्लर बनना मतलब कुश्ती करना वो हर एक का संकल्प रहता था। तो वो अपने माता पिता के साथ कुश्ती के कोच के पास गए और उन्होंने कहा, मुझे रेस्लर बनना है। तो उस टीचर ने कहा, आप तो खड़े भी नहीं हो सकते, आप रेस्लर कैसे बनोगे? तो उनके माता पिता उनको दिल्ली लेकर आए, बड़े बड़े हॉस्पिटल, सीनियर सीनियर डॉक्टर को दिखाया। पता है हरेक ने क्या कहा? हरेक ने कहा, रेसलिंग तो दूर की बात, इनके पास 6 महीने से 1 साल से ज्यादा का समय नहीं है, इनका हम कुछ नहीं इलाज कर सकते, इनके पास टाइम नहीं है, इनकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एक सच्चाई थी, ये उनके जीवन की परिस्थिति थी, ये उनके माता पिता के जीवन की परिस्थिति थी, ये रियल थी, सच्ची परिस्थिति थी। सारे डॉक्टर कह रहे थे कि वैसा ही होगा। वो घर वापस गए, सबने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये बच्चा नहीं चल पाएगा, और ये भी नहीं पता कि कितना समय जीवित रहेगा। लेकिन वंडरफुल बात पता है क्या थी? सबने स्वीकार कर लिया उस बात को, सिर्फ एक व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया। आपको क्या लगता है वो एक व्यक्ति कौन होगा? वो थी उस बच्चे की मां। उसने कहा, मेरा बच्चा रेस्लर ही बनेगा, सिर्फ एक संकल्प। और अगर आप अपने जीवन में देखेंगे ना, आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे अपने आसपास, खुद के जीवन में भी ऐसी बातें आई होंगी, जहां वास्तविकता है, मुश्किल है, लेकिन मन दृढ़ता पर टिक जाता है, मैंने ये करना ही है, मैंने ये पाना ही है, मैंने इस शरीर को ठीक करना ही है। तो उस माँ ने कहा, मेरा बच्चा रेस्लर बनेगा, और वो उस बच्चे को सिर्फ तेल की मालिश से इलाज करती गई मालिश करती गई, संकल्प बोलती गई। सिर्फ मालिश से नहीं होना था, मालिश करती गई लेकिन साथ साथ संकल्प बोलती गई कि ये रेस्लर ही है, ये रेस्लर ही है, ये सिर्फ रेस्लर नहीं बनेगा, ये देश का नाम रोशन करेगा। आज वो बच्चा विश्व में देश का नाम रोशन कर रहा है। आज वो सिर्फ रेस्लिंग नहीं करते हैं, वो बच्चा जो बोल नहीं सकता था, आज वो एक एक दो दो घंटे की टॉक्स देते हैं प्रोग्राम में जाकर, अपना अनुभव शेयर करते हुए। ये किस चीज का प्रूफ होता है? ये प्रूफ होता है मन की शक्ति का प्रूफ, ये प्रूफ होता है आत्मा की शक्ति का प्रूफ। और अगर हम सब अपने जीवन में देखें, छोटी या बड़ी, हम सबके जीवन में कोई ऐसी बात आई होगी जहां सबको लगा होगा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, लेकिन मन कहता है होना ही है, करना ही है, और हम कर लेते हैं। किस किस के जीवन में ऐसा अनुभव है? हाथ उठाओ, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ एक मिनट हाथ उठा के रखना, भैया फोटो खींचो, सबके हाथ ऊपर है। इसका मतलब मिरेकल कुछ लोग नहीं क्रिएट करते, मिरेकल कौन कौन क्रिएट करता है? मिरेकल हरेक क्रिएट करता है, सिर्फ हमें पता नहीं चलता कि हम मिरेकल क्रिएट कर रहे हैं। इस मिरेकल को बोलते हैं संकल्प से सिद्धि। संकल्प ले लिया, उसी को ही दोहराते गए और उसको अपने जीवन में सिद्ध कर दिया। अब ये हाथ दर्द हो रहा है, अगर हमने ये सोचना शुरू किया दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसका दर्द क्या हो जाएगा? बोलिए आप सब, क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। अब दर्द हो रहा है तो क्या बोलना पड़ेगा? अब बताओ इक्वेशन, हो रहा है दर्द, वास्तविकता है, रियलिटी है, इट्स पेनिंग, दर्द हो रहा है, क्या सोचना है? इक्वेशन याद रखनी है, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो दिख रहा है वो बोलना भी नहीं है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, वो बोलना है। अब बताइए हाथ दर्द हो रहा है क्या बोलना है? अच्छे से अच्छे से अच्छे से, हाथ दर्द हो रहा है क्या बोलना है? ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है नहीं, और भी अच्छा बोलो, ठीक हो रहा है। इक्वेशन बहुत ध्यान से रखनी है, ठीक हो रहा है बोलेंगे ना, मतलब ठीक नहीं है। जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, क्या देखना चाहते हैं? ठीक हो गया, तो उसके लिए सिंपल लाइन बोलेंगे, मेरा हाथ तो बिल्कुल परफेक्ट है। बोलो एक बार, बोल सकते हैं इतना? कौन कौन बोल सकता है? किसी के घुटने में दर्द हो रहा होता है ना, कई बार घुटने में दर्द होता है तो बहने क्या बोलती है? मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती, मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकती। दिन में 2-3 बार तो दुआ दे ही देते हैं अपने आप को ये बात बोल बोल के, मेरे दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती, मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकती, मैं चौंकड़ी मार नहीं सकती। वास्तविकता है कि हो रहा है, लेकिन इक्वेशन क्या है? जो हो रहा है वो नहीं बोलना है। तो जिसके घुटने में दर्द है उसको क्या बोलना पड़ेगा? चलो चलो उनको सिखाओ क्या बोलना है। जिसके घुटने में दर्द हो रहा है उसको क्या बोलना पड़ेगा? मेरा घुटना परफेक्ट है, मैं भाग रही हूं, मैं 3 फ्लोर सीढ़ी चढ़ चुकी हूं। ये सोच है। अब हमें लगता है जब नहीं हो रहा तो मैं क्यों बोलूं कि हो रहा है? क्योंकि इक्वेशन ये है कि जो आप बार बार बोलेंगे शरीर को वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन मिलती जाती है और शरीर वो काम करना शुरू कर देता है। तो फिर से इस पर हाथ रखिए, ये परिस्थिति है, ये मन की स्थिति है। क्या परिस्थिति का असर मन की स्थिति पर पड़ता है? यस या नो? मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है? यस या नो? फिर से करते हैं, परिस्थिति का असर मन की स्थिति पर पड़ता है? यस या नो? अच्छे से। ओहो इतना ठंडा नो बोलेंगे तो सुबह तक भूल जाएगा सारा। परिस्थिति का असर मन की स्थिति पर पड़ता है? यस या नो? वेरी गुड, यहां रिकॉर्ड होना है, यहां यहां। अब ये नो को अच्छी तरह रिकॉर्ड कर लेना, जब वापस जाएंगे बातें आएंगी, बातें तो रोज आती हैं, बातें तो सारा दिन आती हैं, सिर्फ ध्यान रखना है बातें बाहर हैं, लोग बाहर हैं, आपका परिवार भी बाहर है, उनका व्यवहार मन की स्थिति पर असर नहीं करता, मन की स्थिति से रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब किसी के साथ हमारा व्यवहार थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, किसी का कोई हमारे से ठीक से बात नहीं करता, कोई हमारे से सम्मान से बात नहीं करता, कोई हमें मुड़कर बच्चा उल्टा जवाब दे देता है, रखो उसको हाथ पे लेफ्ट पे, कोई रिश्ता परिवार का संबंधियों में से ठीक से बात नहीं करते, ठीक से व्यवहार नहीं करते, चलते फिरते उल्टा कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, अब अपने मन की स्थिति को यहां रखो। क्या हमारे मन की स्थिति में दुख उनके व्यवहार से होता है? किस किस को दुख होता है जब कोई गलत व्यवहार करता है? ठीक है, हाथ उठ गया, दुख होता है। अब इसको यहां वापस रखिए, ये उनका गलत व्यवहार है, ये मेरे मन की स्थिति है। क्या मेरे मन की स्थिति में दुख वो लेकर आते हैं? क्या मुझे दुखी वो करते हैं? वो क्या करते हैं सिर्फ? अब इसको रिपीट करना, वो सिर्फ गलत व्यवहार करते हैं। बोलिए, वो गलत व्यवहार करते हैं। बोलिए, वो गलत व्यवहार करते हैं। वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो अपशब्द भी बोल सकते हैं, वो कभी कभी धोखा भी दे सकते हैं, वो ये सब कर सकते हैं। वो सिर्फ एक चीज नहीं कर सकते हैं, वो मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, ताली नहीं बजानी, रुक जाओ, हमको यहाँ फिक्स करना है। बोलिए,
क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोह काज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोह काज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
रिपीट करते हैं, वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, बोलते हैं कच्चे, वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, बोलना है अच्छे से, वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे मन के अंदर घुस के मुझे डिस्टर्ब क्या नहीं कर सकते हैं। फिर से बोलो, वो मेरे मन के अंदर घुस के मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो मुझे दुखी कौन करता है फिर? उंगली रखो उस पे, मुझे दुखी कौन करता है फिर. वेरी गुड. आज तक कहां तक उंगली रखी थी? इधर इधर इधर. वो सब गलत कर सकते हैं, गलत भी मतलब मेरे अनुसार नहीं करते हैं तो मुझे वो गलत लगता है, लेकिन वो इधर नहीं घुस सकते हैं. हमेशा याद रखना, कोई यहां सब कुछ हमारे साथ गलत कर सकता है, कोई हमारे शरीर को भी मार सकता है, लेकिन एक जगह है जहां कोई नहीं घुस सकता है, यहां अंदर. वहां का पावर और कंट्रोल किसके पास है? सिर्फ हमारे पास. तो वहां हम दुखी हैं या सुखी हैं, इसकी जिम्मेवारी किसी और की नहीं, इसकी जिम्मेवारी परिस्थितियों की भी नहीं, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है. कोई होता है जिसके जीवन में बहुत मुश्किल आते हैं, शरीर भी बीमार है, काम कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा, घर पे भी धन नहीं है, बहुत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो आत्मा शक्तिशाली है. वो कहती है हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चलती जाती है शक्ति से. और कोई और होता है, उसके घर में सब कुछ परफेक्ट है, धन भरपूर है, परिवार बढ़िया है, शरीर अच्छा है, लेकिन आत्मा शिकायत पे शिकायत शिकायत, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. ये इसके ऊपर यहां का नहीं, इसके ऊपर सिर्फ हमारा खुद का असर पड़ता है. और जैसा असर हम यहां क्रिएट करते हैं, वो संकल्प हम भेजते हैं और बाहर की हमारी सृष्टि वैसी बननी शुरू हो जाती है. कौन कौन अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है साथ में? अपने परिवार के सदस्य की तरफ मुड़कर देखो और उनको बोलो, आज से आप मेरे मन को टच नहीं कर सकते. मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? बताओ बताओ, मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? इसको कहते हैं स्वतंत्रता, इसको कहते हैं स्वराज्य, इसको कहते हैं आजादी. ये तो गुलामी है. आपने ऐसा बोला तो मैं दुखी हो गई, आपने मुझे दुखी कर दिया, आपने मुझे नाराज कर दिया, आपने मेरा परेशान कर दिया. कई बार तो बोलते हैं आपने तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया. इतना रिमोट कंट्रोल कैसे किसी को दे सकते हैं? ये रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिया ना, इसलिए मन की स्थिति में आज हमें लग रहा है कि खुशी चाहिए. अब फिर से एक बार हाथ रखिए, एक और चीज देखते हैं. जब कोई परिवार का सदस्य, बच्चा भी हो सकता है, हमारे साथ थोड़ा सा दूसरी तरह से व्यवहार करता है, कुछ करता है, उस समय उसकी मन की स्थिति खुश नहीं है, तो मतलब वो अपनी वाइब्रेशन में किधर है? ऊपर है या नीचे है? थोड़ा सा नीचे करो उसको, लेफ्ट हैंड को. ओके, ये ध्यान से देखना है. जिस समय कोई गलत व्यवहार करता है, जोर से बोलता है, चिल्लाता है या परेशान है, उस समय वो आत्मा खुश नहीं है, तो उसकी वाइब्रेशन किधर है? नीचे है. अब अपना राइट हैंड पकड़ के रखना. अब अगर उसके व्यवहार को देखकर हम भी बुरा मानेंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो हमारी वाइब्रेशन किधर चली जाएगी? अब राइट हैंड किधर जाएगा करिए, वो भी किधर चला जाएगा? नीचे. जब हमारी स्थिति भी नीचे जाएगी, हमारे से उनको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? दर्द की. तो वो कहां चले जाएंगे? करिए करिए, वो कहां जाएंगे? और नीचे. उनको देखकर हम कहां जाएंगे? और नीचे. और प्यार से हम कट्ठे कहां जा रहे हैं? नीचे 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 नीचे. इस समय अगर आप अपने घर के ऊपर नजर मार के देखिए, सब सामान आ चुके हैं, साधन आ चुके हैं, सब कुछ है घर के अंदर, एक एक की जगह दो दो तीन तीन भी हैं घर के अंदर, लेकिन इस समय परिवार के बच्चों को शक्ति की जरूरत है, मन की शक्ति की जरूरत है. कोविड से पहले हम तनाव, टेंशन इन शब्दों को यूज करते थे, कोविड के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है. कौन कौन मानता है इस बात को? अब ये बढ़ा तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो दिखाई दे रही है कि इसका बच्चों पर असर हो गया है, उन पर जिनके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आई हुई है, जिनके जीवन में कोई चैलेंज, कोई मुश्किलात नहीं है, जिनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन वो कह रहे हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक. यहां तक कि बहुत सारे बच्चे इस साल न जीने का फैसला लिया, कोई ऐसी सोच ने अपने ऊपर हावी कर लिया कि ऐसे ही बस सोचा कि मुझे जीना ही नहीं है, क्योंकि मन इतना उलझ जाता है और ऐसी सोच आ जाती है कि उस सेकंड हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं। जब हम इस बात को अखबार में पढ़ते हैं या किसी और के घर में सुनते हैं, हम कहते हैं हाँ उनके घर में हुआ होगा। आप ये समझिए, ये इस समय कहीं भी हो रहा है, जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां भी हो रहा है। और अगर अभी भी हमने कुछ किया नहीं तो अगले साल इसका फिगर क्या हो जाएगा, क्या होगा, घटेगा अपने आप से? नहीं। आप और हम, हमें याद है 20-25 साल पहले डॉक्टर कहते थे ध्यान रखो डायबिटीज बढ़ रहा है, ध्यान रखो डायबिटीज बढ़ रहा है, हम अपना चलते गए वही लाइफस्टाइल। आज घर घर में पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं, डायबिटीज घर घर में पहुंच गया, आम लगता है, अब तो कुछ लगता भी नहीं, अब उसको बीमारी भी नहीं गिनते, कहते हैं वो डायबिटीज है, ओ कोई बड़ी बात नहीं छोड़ दो। इसी तरह ये डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत फास्ट बढ़ रहा है, और जब डिप्रेशन के थॉट्स आते हैं तो न जीने के थॉट्स आते हैं कि मुझे जीना नहीं है, मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। और अगर उस समय कोई मुझे नहीं रोकता है तो हम ऐसा कोई डिसीशन ले लेते हैं, और ये बच्चों पर असर कर रहा है बहुत। तो आपको क्या लगता है, अब इसको ऐसे ही रहने दें या इसके लिए कुछ करें, करें या नहीं करें, करना या नहीं करना? आपको पता है माता पिता जब तक उनके अपने मन की स्थिति थी, तनाव था, वो झेल रहे थे, कहते कोई बात नहीं ना, टेंशन है, चलता है चलता है, हम मैनेज कर लेंगे, अपना मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब अपने बच्चे को दर्द में देखते हैं ना, मोह है ना, अटैचमेंट है बहुत, तो बच्चे को दर्द में देखा नहीं जा सकता है। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये अगले साल और बढ़ जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। भारत ने स्वर्णिम भारत बनना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आत्मा को शक्तिशाली बनाना होगा। हमने मेहनत की, अपने बच्चों के लिए घर में सब साधन ले आए, पढ़ाई ले आए, सब कुछ ले आए, अब एक छोटी सी मेहनत करनी है, और ये हर माता पिता की जिम्मेवारी है, अपने घर में शक्ति लेकर आनी है, वाइब्रेशन लेकर आनी है उस पावर की, ताकि वो मन, जो बच्चों का मन है उसको वो शक्ति मिलने शुरू हो जाए। कौन कौन अपने परिवार में शक्ति लाने की प्रतिज्ञा करना शुरू करेंगे आज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना। हम रोज मिल रहे हैं परिवारों से, इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं, वो हम में से एक हैं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, ऐसे ही बच्चा आया घर, स्कूल का बैग रखा और कहा पता ही नहीं चला, ऊपर गया और जंप कर गया, स्कूल का बच्चा, और एक दो नहीं बहुत सारे ऐसे नंबर। ये हमारे बीच के परिवार हैं, ये हम में से एक हैं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन संग का रंग, वातावरण में शक्ति की कमी लोगों के मन के ऊपर असर कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खिलौना तो सबके हाथ में ही आ चुका है जो असर कर रहा है ना, खिलौना सबके हाथ में। आज एक प्रतिज्ञा करते हैं, आज इतने बड़े संगठन में कुछ तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए, वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, प्रतिज्ञा तो पक्का करनी चाहिए। आज एक प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपने फोन से, अपने टीवी से, अपने इंटरनेट से कोई ऐसी चीज न देखेंगे, न सुनेंगे, न पढ़ेंगे जिसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, निंदा, ये सारे विकार हैं। कौन रेडी है ये करने के लिए? ना ना, सोच के इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हाथ उठा दिया है, तो बहुत आसान, लेकिन दृढ़ता से करना पड़ेगा। एक इक्वेशन सिंपल है, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करते करते वो यहां जाता है, यहां जाने से वो सोच बनती है, सोच हमारे संस्कार बनते हैं, संस्कार हमारे व्यवहार में आता है, कर्म बनता है और कर्म से हमारा भाग्य बनता है। आज आप अपने बच्चों को फोन यूज करने से रोक नहीं सकते, राइट और रॉन्ग? क्या आप अपने बच्चों का फोन ले सकते हैं उनसे? नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं, आप चाहे अकेले हों कहीं, आप उस फोन से कुछ ऐसा सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं जिसकी वाइब्रेशन नीचे है, तो आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी और आपकी वाइब्रेशन आपके घर की शक्ति बन जाएगी और वो घर की शक्ति उन बच्चों को शक्ति देगी ताकि वो भी वो चीजें नहीं कंज्यूम करें। अगर ये बच्चे वही चीजें कंज्यूम करते रहेंगे तो यहाँ की शक्ति कम होनी ही है, क्योंकि वो असर कर रही है, वो कभी कभी नहीं देख रहे, वो रोज 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 देख रहे हैं। तो उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम उनसे वो खिलौना नहीं ले सकते, लेकिन हम खुद प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम उस खिलौने का सिर्फ सदुपयोग करेंगे। साधन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमात्मा कहते हैं साधन को मालिक बन के यूज करो, साधन का गुलाम ना बन जाओ, जिससे जीवन से साधना ही निकल जाती है। फिर मालिक बन के यूज करो, फोन को यूज करना है हमें नहीं, फोन को छोड़ना है, उसके तो हमारे बहुत काम हो जाते हैं, लेकिन फोन को मालिक बन के सिर्फ जो चीज मेरी शक्ति बढ़ा रही है उसी को वहां से देखना सुनना पढ़ना है। आपको पता है हम एक उसको देखते हैं उस वीडियो को तो बनाने वाला और वैसा बना देता है। अगर देखने वाले बंद कर दें तो आपको नहीं लगता बनाने वाले बनाने वाली चीज बदल देंगे? फिर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? अगर कंज्यूमर चॉइस बदलता है तो क्रिएटर तो प्रोडक्ट बदलता ही बदलता है। हम क्रिएटर को कैसे बोलें? वो तो बोलते हैं लोग ऐसी चीजें देखते हैं। तो जिम्मेवारी क्रिएटर की कम किसकी ज्यादा है? जैसे आपने किसी के लिए खाना बनाया, आपने चार पांच चीजें बनाई, इस तरफ थी चटपटी चीजें और इस तरफ थे स्प्राउट्स, फल, बड़ी हेल्दी हेल्दी चीजें। जितने आपके घर मेहमान आए वो चटपटी चीजें सारी खा गए, वो खत्म हो गई, और जो इधर पड़ी हुई थी वो क्या हो गई? वो वहीं की वहीं पड़ी रही। तो अगली बार आप कितना बनाओगे? फिर अगली बार आप कौन सी चीज ज्यादा बनाओगे? तो ये खाने वाले पर निर्भर होता है, ये वीडियो देखने वाले पर निर्भर होता है, कौन से गाने हम सुनते हैं उस पर निर्भर होता है, कौन सी पिक्चर हम देखते हैं ये उस पर निर्भर होता है। जब हम देखेंगे तो वो और बनेगा, जितना वो और बनेगा वो सब बच्चे देखेंगे, और जितना वो सब बच्चे देखेंगे उनके मनोस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जब आप और मैं स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कितनी पिक्चरें देखते थे एक साल के अंदर? याद करो, कितनी पिक्चर देखते थे एक साल के अंदर? पास हो गए तो पिक्चर देखने को मिलेगा, छुट्टी है तो एक पिक्चर देखने को मिलेगा, और उसमें भी कोई भी पिक्चर जिसमें कोई भी दृश्य ऐसा था तो 18 साल से नीचे का बच्चा तो वो देख ही नहीं सकता है। आज वो फोन से क्या देख रहे हैं? क्या उसमें कोई रोक टोक है कि कौन सी उम्र की बच्चा देख सकता है, नहीं देख सकता है, क्या देख सकता है, कितने बजे देख रहा है, कितना देख रहा है? और हम चलते जा रहे हैं ऐसे ही, हम कुछ नहीं कर रहे इसके लिए, तो मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। हम उनको जाके नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने घर के अंदर सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता, मर्यादाएं हम लेकर आ सकते हैं। उनके मन पर उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना ही पड़ना है। कौन कौन रेडी करने के लिए? पक्का? देखो कल सुबह फोन उठाओगे ना, ऐसे आएगा सामने, डिलीट करना है उसको तुरंत। और दूसरी चीज अपने जीवन में ऐड करनी है कि जो बनना चाहते हैं वो ज्ञान थोड़ी देर रोज अपने अंदर डालना है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं, रोज सुबह हम एक घंटे के लिए सेंटर पर आते हैं, मेडिटेशन करते हैं और परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, जिसमें सोचने का तरीका आता है, हर संकल्प सिखाया जाता है, ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, रोज वो भरते हैं। वो सब राइट हैंड वाले संस्कार की बातें हम सुबह सुबह भरते हैं, सारा दिन में वो अपनी सोच में अपने आप आती जाती है, करना नहीं पड़ता। इसी तरह जो सारा दिन कंटेंट दूसरा कंज्यूम करते हैं, वो अपनी सोच में अपने आप आता जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। इसलिए अपने जीवन में एक परिवर्तन यहां से जाने पर लेकर आए, अपनी घर की ऊर्जा को ऊपर उठाना है, इसकी जिम्मेवारी उठाएं। ये मत सोचिएगा मेरे बच्चे तो ठीक है, उनको कुछ नहीं है। किसकी शक्ति कहां तक पहुंची है, अगले साल कहां पहुंचेगी, अगले साल दो साल बाद कहां पहुंचेगी, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हमें उनकी शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ भी बात आ जाए, ध्यान किस पर रखना, मुझे सोचना कैसे है। लेकिन जब हम सारा दिन वो फोन और टीवी से भरते हैं ना, तो हमें नेगेटिव सोचना नेचुरल हो जाता है। और जैसे ही रोज हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ते हैं, पॉजिटिव सोचना वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। दो एग्जाम्पल देती हूँ। भगवान हमें दो बातें सिखाते हैं, कोई भी जीवन में बात आ जाए, कोई भी मतलब कोई भी, तो जैसे ही बात आए पहला संकल्प करो, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलो एक बार, क्या बोल सकते हैं? इसमें मेरे लिए कल्याण है। कौन कौन रेडी है इतना बोल सकते हैं? कोई भी बात आई, देखो लिख कर लेना ये लाइन, ये भगवान के महावाक्य है, लिख कर रखना इसको एज इट इज। इस बात में मेरे लिए कल्याण है। अब क्या होता है, बात आती है और हम यहां से संकल्प करते हैं परमात्मा मेरे साथ है, इस बात में मेरा कल्याण है। जैसे ही हम कहते हैं इस बात में मेरा कल्याण है, मन की स्थिति कहां चली जाती है, परिस्थिति कहां हो जाती है, नीचे। और फिर मन की स्थिति परिस्थिति पर हावी हो जाती है और कल्याण अभी नहीं तो कल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ये नहीं कहते और हम कहते इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, ये तो सब गड़बड़ हो गया, अब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर मन की स्थिति कहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है, परिस्थिति क्या होती है, ऊपर आ जाती है और सच में वो बात हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो हर बात हमारे लिए क्या है, बोलें सभी इकट्ठे मिलकर, हर बात में मेरे लिए क्या है, कल्याण है। ये लाइन पक्की हो गई, एक मंत्र ये पक्का कर लेना है, इस बात में मेरे लिए कल्याण है। दूसरा, अगर लोगों का अलग अलग व्यवहार है, किसी का अलग अलग संस्कार है, तो परमात्मा कहते हैं बस एक छोटी सी बात करना, आप सिर्फ उनके लिए मन में एक ही संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए, इतना ठंडा ठंडा यहां बोलेंगे तो परसों जाकर कैसे बोलेंगे फिर, बोलो बोलो कैसे हैं वो, वो बहुत अच्छे हैं। इसको बोलना नहीं है, यहां से बोलना है, ठीक है, ये दुआ भेजनी है, इसको बोलते हैं ऐसे होना, ऐसे। उनके अंदर गलती है, हमें गलती का चिंतन नहीं करना है, हमें दुआ देनी है, वो बहुत अच्छे हैं। थ्री स्टेप फॉर्मूला है, देखो भगवान कैसे इक्वेशन सिखाता है। तो परमात्मा कहते हैं पहला स्टेप, आप बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली आत्मा है, वो शांत स्वरूप आत्मा, सोचते जाओ वो बहुत अच्छे हैं। सेकेंड स्टेप, परमात्मा कहते हैं बहुत अच्छे बोलते बोलते, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, रखो उंगली, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, हम, क्योंकि हम बहुत अच्छा चिंतन कर रहे हैं। और जब हम बहुत अच्छे बन जाते हैं तो हमारी ये बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाती है और वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। सिंपल इक्वेशन है, थ्री स्टेप। फर्स्ट स्टेप संकल्प, वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा स्टेप बोलते बोलते कौन अच्छा बन जाएगा, हम। तीसरा स्टेप, वो बहुत अच्छे वाइब्रेशन किसके पास जाएंगे, उनके पास, और वो क्या बन जाएंगे, बहुत अच्छे। इसका मतलब जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है और बोल बोल के उसको बना देना है। ये करने से मन की स्थिति हमेशा ऊपर रहेगी, शक्तिशाली रहेगी, शांत रहेगी, स्वस्थ रहेगी और मन की स्थिति से किसी भी परिस्थिति को परिवर्तन करना बहुत आसान है। अपना फोन निकालो, कुछ लाइनें लिखते हैं, फटाफट से लिखें या रिकॉर्ड करें संकल्प जो हम रोज बोलेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं, मैं हमेशा खुश हूं, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, सत्युगी आत्मा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरे घर में धन भरपूर है और परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको ड्रॉ करो पूरा अपने चारों तरफ, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ, एक व्हाइट लाइट का सर्कल ड्रॉ करो, अपने बच्चों के चारों तरफ भी ड्रॉ करो, अपने घर के चारों तरफ भी ड्रॉ करो। रोज रात को, आज रात से शुरू करेंगे, सोने से पहले इन संकल्पों को दोहराएंगे, कल सुबह इन संकल्पों को फिर से दोहराएंगे और फिर कल के सुबह के सत्र में हम देखेंगे कि इसको हमने आगे कैसे करना है जिससे हमारा भाग्य ही परिवर्तन हो जाएगा। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कल सुबह के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बताइएगा अगर आपको कंफर्टेबल लगे। कल का सेशन का टाइम सुबह 7 बजे का है, क्या हम 7 बजे की जगह 7:45 आ सकते हैं यहाँ पर? किस किस के लिए कंफर्टेबल है 7:45 आना? थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो कल सुबह हम 7:45 मिलेंगे। एक मिनट साइलेंस में बैठकर उन संकल्पों को दोहराएंगे और अपने परिवार को देखो किसके लिए आपको कौन सा संकल्प बनाना है। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो उनको बनाना चाहते हैं वो सोचना है। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बिल्कुल हॉल में एब्सोल्यूट साइलेंस हो, सिर्फ बाहर का साइलेंस नहीं, मन का साइलेंस। मन में उन संकल्पों को दोहराइए, अपने परिवार को देखिए किसको कौन सी दुआ देनी है। आपके पास डायरी है उसमें आप लिखिए, फोन है उसमें आप टाइप कीजिए, 2 मिनट ये आपके लिए हैं। बाहर हमें कहीं जाना नहीं है, लेकिन इस 2 मिनट का यूज कीजिए और उतनी 2 मिनट में हमारे मंच पर मेहमान आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे उन्हें ये शांत और स्थिर मन का वाइब्रेशन मिलना चाहिए। हाथ उठाइए कौन 5 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बिल्कुल मौन में, लेकिन उसको यूज करना समय को। अपने बच्चों को कौन सी शक्ति देनी है संकल्प लिखिए, परिवार के लिए लिखिए, पढ़ाई के लिए लिखिए और कल सुबह हम 7:45 मिलेंगे। ओम शांति।